محمد ونسلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النادى الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله صحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. اللہ سبحانہ تعالی اس پوری کائنات کا ایک نقشہ ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ ہر چیز کائنات کی ہمارے سے تو پوشیدہ ہے, وجود اس کے جو اللہ اور اللہ کا نبی ہمیں فرما دے اور بتا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا حال بیان فرمایا ہے ہمارے سے, اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کی ہے. یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے, آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں, یا دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, یا دنیا میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, یہ تو ظاہری چیز ہے. اللہ پاک نے ان کا تعارف کرایا ہے ہمارے سے, خاص طور پہ مومنین سے, ایمان والوں سے متعارف کروایا ہے ان چیزوں سے کہ ہم ان کی حقیقتوں کو پہچانیں کہ ان کی ریئلٹی کیا چیز ہے. سبحان اللہ, یہ شان صرف ایمان والوں کی ہے الحمدللہ, جس نے قرآن کو پڑھا, قرآن کو مانا, قرآن کو سمجھا, وہ پھر ان تمام چیزوں کی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے. ایمان کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ایمان کے بعد انسان کو سب سے بڑا انعام جو ملتا ہے وہ قرآن ملتا ہے. تو اسی قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی, ہمارے فہم میں بھی نہیں آتی, ہمارے تصور بھی نہیں آتی. کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے, اس آسمان سے پر ایک اور آسمان ہے, پھر ایک اور آسمان ہے, اس میں بھی مخلوق ہے, مخلوق بھی بہت ہے, عجیب عجیب مخلوق ہے, عجیب عجیب طریقے مخلوق ہم فرشتے کہتے ہیں, ان کے بھی مقامات ہیں, ان کے بھی درجات ہیں, ان کی بھی معرفتیں ہیں. اور کچھ فرشتے تو ایسے ہیں کہ جو مسلسل نور کے اندر ہی ڈوبے ہوئے ہیں. اب ہمیں کیا پتہ ان باتوں کا, اللہ تعالیٰ قرآن بات ہے. اور پھر اس زمین کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس زمین پہ تم رہتے تو ہو, 80-80 سال رہتے ہو, کھاتے ہو, پیتے ہو, اٹھتے ہو, سب کچھ کرتے ہو, تم پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے, سمجھ نہیں آتا. بس گائے پکڑی, ذبح کیا, گوشت کھا گئے, بکری کو پکڑا, ذبح کیا, گوشت کھا لیا, مرغی کو پکڑا, انڈا کھا لیا, شہد مکھی کو دیکھا, شہد لے لیا اس سے. ہمیں تو اس سے زیادہ کوئی حقیقت سمجھ ہی نہیں آتی کسی چیز کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں میری مخلوق ہے کہاں, کدھر اور کیسی ہے. میری مخلوق تو بعض ایسی بھی ہے کہ تمہاری آنکھیں کیا آنکھوں کے ساتھ تم اور بھی چشمے لگا لو, خوردبینیں لگا لو, تب بھی وہ تمہیں نظر نہ آئے, پتہ بھی نہ چلے تمہیں کہ میری مخلوق ہے یہ. تو ایسی چھپی مخلوقیں ہیں میری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آسمان جتنی مخلوق ہے, اور یہ زمین جس میں جتنی مخلوق ہے, ہم ان کو مردہ سمجھتے ہیں, بے جان سمجھتے ہیں, فضول سمجھتے ہیں. چلتے چلتے ہماری عادت ہے, باغ میں سیر کر رہے ہیں تو چلتے چلتے ویسے پھول توڑ لیتے ہیں, اور کچھ نہیں, چلتے چلتے صبح ٹہنی کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ پتوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, گھاس سے بیٹھے تو گھاس کی پتیوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے لیے وہ کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میری مخلوق ہے, یہ میری مخلوق ہے, کیوں ڈسٹرب کرتے ہو اس کو, تمہارا کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو تم بہت جاندار ہو, تم سب کچھ تم ہی ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سنو, یہ ساری جو مخلوق ہے, جو کچھ بھی اس میں ہے, सब सब कि सब की सब मुझे जानती है कि मैं इनका रब हूँ, मैं इनका खालिक हूँ, मैं इनका मालिक हूँ, मैंने इनको पैदा किया है, मैं कादिर हूँ, मैं मुतलिक हूँ, मैं करीम हूँ, सारी सिफात को मेरी जानती है मखलूक, छोटी से लेकर बड़ी तक, ये जो आपको नजर आएगा छोटा पतंगा जो होता है उड़ रहा है हवा के अंदर, ये भी जानते हैं मुझे। बस जानने की वजह से इनका क्या काम है, क्या काम है कि हर चीज जो कायनात में जमीन आसमान में सब बहलिल्लाहि मा फिस समावाति व अर्ध, सब के सब ये हैं, क्या करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं। इंट्रोडक्शन, ये कायनात का इंट्रोडक्शन, बताओ हमें क्या पता था, हम पत्ते को समझते हैं, पता है बायोलॉजी पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, वहीं तक जाएंगे जहाँ तक हम समझते हैं, लेकिन ये उससे वरे है, गुजर जा अक्ल के नूर से, कि अक्ल से भी आगे के बुलंद मुकामात हैं, ये जो है इब्तदा है, ये इंतहा नहीं है। इंतहा मिलती कहाँ है, अल्लाह अकबर, जब कुरान की सीढ़ियों पर इंसान चलना शुरू हो जाता है, कुरान की सीढ़ियों पर चलना शुरू होता है और मंजिलों को तय करता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर क्या होता है, उसको सही चीज़ें समझाना शुरू हो जाती हैं, फिर तमाम उलूम जो उसके पीछे होना शुरू हो जाते हैं, वो एक मार्फत की अजीब दुनिया में रंगों में ढूंढ जाता है इंसान। तो अल्लाह कहते हैं ये तो सब जो है ये तो मुझे याद करती है, मुझे पुकारती है, सब बहलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ध, जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं जिसका वजूद है सिवाय मुर्दों के, ये तो हदीस से बता रहा हूँ, सिवाय मुर्दों के, हर चीज जो है कायनात की वो मुझे पुकारती, मुर्दा है उसको क्या पुकारना, जिसमें देखते हैं जान है, छोटी सी छोटी कीड़ी भी जो होगी पहाड़ों के अंदर, छोटी सी काली चीड़ी कीड़ी चींटी जिसको हम कहते हैं आंट्स, वो भी कल चल रही होगी, तो अल्लाह पाक कहता है कि मैं उसके पाँव के निशानों को भी जानता हूँ किधर चल रही है, सुभान अल्लाह, हलीम हूँ, खबीर हूँ, हकीम हूँ, मुझे पता है, मुझे पता है इसके अंदर सिस्टम क्या चल रहा है, इसको कहाँ से रिज़क देना है, इसकी ज़िंदगी कितनी है, इसकी औलाद कितनी है, ये अंडे कहाँ देगी, ये बच्चे कहाँ देंगी, हमें पता ही नहीं हो किधर रह रही है, मैं क्यों उसको जिंदा करता हूँ, वो क्यों चल रही है, मैं कुछ क्यों परिश क्यों करता हूँ, मैं उसको क्यों देखता हूँ, इसलिए कि वो मुझे याद करती है, मैं उसको याद करती हूँ। क्या रिश्ता है अल्लाह, ये रिश्ता है मखलूक और अल्लाह ने अपने पता है, ये मार्फत है, ये हकीकत है, अल्लाह ताला जो ज़ाहिर फरमा रहे हैं कि ये हकीकत खोली जा रही है दुनिया की हमारे सामने, कि भाई खाने पीना ही नहीं है सब, हम समझते हैं खाना पिया बस फिर उसको मरे जनाजा हुआ दबा दिया, ये कोई जिंदगी है, जिंदगी तो यह है अल्लाह ताला कहते हैं, किसी चींटी से पूछ लो कि उसको जिंदगी क्या है, किसी एक कीड़े से पूछ लो कि तेरी जिंदगी क्या है, किसी एक अदना से अदना चीज से पूछो कि तेरी हकीकत क्या है, तो पलट के कहेगी मेरी हकीकत क्या है, मैं अपने रब को पहचानती हूँ, मैं उसका जिक्र करती हूँ, मेरी तस्वीर यह है, हवा में उड़ता है एक परिंदा, उड़ता है चींची करता है, कभी जाके देखें आप सैर पर करते हो, देखें किस तरीके से अल्लाह को याद कर रहा होता है आसमान के ऊपर, किस तरीके से, हाँ जहन और शोर से अगर आप किसी चीज को देखें तो हर चीज आपको अल्लाह की तरफ पलटती हुई नजर आती है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में कहा एक बात, सब्बह लिल्लाहि मा फिस, हर चीज जो दुनिया और आसमान में है वो मुझे याद करती है ना, सिवाय मुर्दे जो होंगे, तो इंसान कहाँ है, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे जहन में, आप भी सोचे इंसान कहाँ है, क्या इस जमीन में, इस दुनिया की और जगह है पर इंसान है, इंसान तो इसमें है दुनिया पर है या नहीं, तो कुरान कहता है कोई मेरा जिक्र करता है या नहीं, कि कोई चीज ऐसी ही नहीं जो कायनात में जिक्र ना करती हो, सोचें इस बात की तरफ, कि अल्लाह तो फरमाते हैं कि हर जो भी वजूद है सिवाय मुर्दों के, जो भी वजूद है इस वक्त, जिसका भी वजूद है जमीन और आसमान के ऊपर, वो मुझे याद करता है, तो पता ही चला, अजीब बात सुन बता रहा हूं, पता ही चला कि हर अल्लाह को मानने वाला शख्स, जाहिर जिंदा है, अल्लाह को मानने वाला इंसान, अल्लाह को मानने वाला शख्स, औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या बीमार हो, सेहतमंद हो या जो कुछ हो, अल्लाह के इस आयत से साबित ही होता है कि वो जाकिर है, है या नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जिक्र नहीं कर रहा, आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा जिक्र नहीं कर रहा, अजीब बात बता रहे हैं आपको, नहीं वो आप कैसे कह सकते हैं फला आदमी जिक्र नहीं कर रहा, कुरान तो कहता है हर चीज़ जिक्र कर रही है, तो मैं कैसे कह दूँ फला आदमी जिक्र नहीं कर रहा, अल्लाह ने जब कहा तो यकीनन हर ईमान वाला, वो तो बेचारे महरूम है जो अल्लाह को नहीं मानते, तो अल्लाह ने कह दी, उनको क्या पता, जो अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह के जिक्र का क्या पता उनको, तो लाइन ही अलग हुई। लेकिन जो अल्लाह को मानता है, वो इंसान जो अल्लाह को मानता है, वो क्या होगा, अल्लाह का जिक्र जरूर करेगा। सब बहाल्लाह माफिस कैसे करेगा, अब ये सोचना है। अल्लाह ने इसका खुद इंतजाम कर दिया ईमान वालों के लिए, अल्लाह ने इसका खुद इंतजाम किया है ईमान वालों के लिए। हर ईमान वाला जो होता है वो जाकिर हो जाता है और जिक्र करता है। कैसे, अल्लाह सुबहाना तआला ने वो कलमा ईमान वालों को अता फरमाया है जो उनकी जिंदगी बन गई है। उसके बगैर उनकी जिंदगी नहीं चलती, उनका वक्त ही नहीं गुजरता, कैफियत नहीं बदलती है। वो कलमा क्या है, इतना बुलंद कलमा है क्योंकि वो तो जिक्र के लिए उतारा जा रहा था इंसान के लिए। वो इतना बुलंद कलमा अल्लाह ने आसमान से उतारा कि जिस वक्त वो कलमा उतरा तो पूरी कायनात के अंदर हलचल मच गई, हवाएं रुक गई, पहाड़ रुक गए, समुद्रों में खामोशी तारी हो गई, दरियाओं में रुकावटें बंद हो गई, रवानगी ख़त्म हो गई, परिंदे सहम गए, शैतानों पे अंगारे बरसे। उस वक्त ये कलमा उतरा जो हर इंसान मोमिन को जाकिर बनाता है शानस करने की। हज़रत अली करमुल्लाह फरमाते हैं कि जब वो कलमा उतरा तो ये मक्के के जो पहाड़ थे इनसे खुद आवाजें सुनी हमने कि उस कलमे की बरकत से पहाड़ों ने भी वो कलमा गाने शुरू कर दिया, जिक्र शुरू कर दिया। मुश्किन मक्का को पता चला तो उनके मुंह से तो एक ही बात निकलती थी, ओ क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पे भी जादू कर दिया, ये यकीनन जादू है इनकी तरफ से, ये पहाड़ भी जो ये कलमा पढ़ रहा है ये कलमा बोल रहा है। तो इतना बुलंद कलमा था जो अल्लाह सुबहाना तआला ने जिसके वजह से हर ईमान वाला हर मोमिन जो है वो जाकिर बन जाता है, खुद ब खुद बन जाता है, इंतजाम कर लिया ऑटोमेटिक, शौरी ला शौरी, पता ही नहीं कि मैं जाकिर उसे जिक्र कर रहा हूं, लेकिन वो जिक्र कर रहा होता है, बुलंद दर्जे का जिक्र कर रहा होता है। कैसे हो सकता है कि ईमान वाला आदमी और अल्लाह को याद ना करे, एक कीड़ा याद करो ईमान वाला याद ना करे, है ना अजीब बात। मैं कहता हूं जब याद करते हैं इस आयत से साबित है, इतना अजीम कल्ला पाक ने अल्लाह पाक ने इंसान को ताफर, उसकी बरकत ऐसी है उस कलमे की अल्लाह अकबर कि हर हर्फ के साथ, इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हर कलमे उस कलमे की हर लफ्ज के साथ जो है 4000 नीकियां मिल जाती हैं, 4000 दर्जे बुलंद हो जाते हैं उस इंसान के हर हर्फ के साथ, और 4000 गुना उसके खत्म कर दिए जाते हैं। उसकी कसरत ऐसी है, देखिए क्या कलमा है, वो कलमा कौन सा है जो अल्लाह ताला ने हमें जिससे जाकिर बना दिया, ना मानते भी हम जिक्र करना शुरू कर देते हैं, हमें पता नहीं हम जिक्र शुरू कर देते हैं, वो कौन सा कलमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने ये कलमा दिया है इस उम्मत को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ऐ मूसा मैं अपने हबीब की उम्मत को 3 अपने नामों से अफजल कर रहा हूँ। हज़रत मूसा ने कहा कि वो कौन से 3 नाम हैं जिससे भाई अफजल हो रहे हैं, तो फरमाया 3 नाम होंगे, अल्लाह, रहमान और रहीम। इतने बुलंद नाम होंगे कि इससे पहले मैंने किसी उम्मत को ये नाम नहीं दिया, अफजल तीन नाम साथ इस उम्मत को बुलंद कर रहा। तो एक अंधा खड़ा था, उसने कहा इतना बड़ा कलमा है मौला, तो मैं तुझसे दुआई क्यों ना मांग लूं, मेरी आंखें सही कर दे, उसी वक्त उसकी आंखें सही हो, इतना बाबरकत रहमतों वाला कलमों वाला नेमतों वाला ये कलम है अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। इसकी बरकत से कोई शख्स भी जो है वो जिक्र से महरूम रहते ही नहीं। आप ये देख लें, ठोकर भी लगती ना किसी बच्चे को, हम क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह, पता कुछ भी नहीं है, हर बहाने से हमारी जबान से ये कलमा निकलता ही रहता है, धीरे हर बहाने से ये कलमा इंसान की वजह निकलता ही रहता है, वो ऐसा प्रवस्त हो जाता है ईमान के साथ और मोमिन के साथ कि हर बच्चा भी इस कलमे को जानता है, इतना आसान है। हालांकि कितना बुलंद कलमा है, कितने दर्जात और कितने नूर है इस कलमे के अंदर, लेकिन क्या है कि हर मोमिन के लिए अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया है कि हर आदमी इस कलमे को पढ़ता है और कितना इनाम उसको मिलता है इस कलमे के बाद, हालांकि उसको पता भी नहीं है कितना इनाम मिलता है और कितना आखिरत में इनाम होगा इसका, उसका उसको तसव्वुर भी नहीं। तो अल्लाह का ये काम जो हक और सच है, सच के अल्लाह ताला ने सुब्हानल्लाह मा फिस समावात मा फिल, हर कायनात के अंदर जो है इंसान भी सिवाय मुर्दों को जो अल्लाह को नहीं मानता, वो क्या है, हर आदमी औरत जाकिर है, क्योंकि इस कलमे का सबको पता है और सब पढ़ते हैं। एक बार इस कलमे की फजलियत देखें, हम इतनी याद पड़ जाती है इंसान को, हर वक्त पढ़ते हैं, वजू किया हम पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते ना, शूरी तौर पर जा रहे हैं, ये नहीं क्योंकि आपको कह रहे कुछ बिस्मिल्लाह, यानी जिस आदमी कहते वजू करते लफ्ज आएगा या नहीं आएगा, क्या मिला उसको। जब इंसान बिस्मिल्लाह के साथ वजू कर लेता है और उस पर जो फरिश्ता होता है उसको पिक कर लेता है, चुन लेता है उस लफ्ज को, उस आदमी के कलमे को, जैसे कि फरिश्ते करते हैं, और जब तक आदमी का वजू रहता है, जब तक वजू रहता है उस बिस्मिल्लाह की बरकत से नेकी उसके अमाल में जमा होती रहती है, मशीन चल रही है। बल्कि मजीद ये कि अगर उस वजू के साथ हमल हो जाए तो उस हमल से जो बच्चा पैदा होगा, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा, उन तमाम तीन नस्लों में जिन बच्चों के सांसें होंगी उन सांसों के बराबर उसको सवाब अता फरमा देंगे। पता चला है बिस्मिल्लाह का कितने तो हम पढ़ जाते हैं। अल्लाह ने सही कहा ना कि हर मोमिन जाकिर है अल्लाह के फजल से, हर मोमिन जाकिर है। एक शख्स के इंतकाल हो गया तो हुक्म हो गया उसको, अमाल में कुछ था ही नहीं, हिसाब किताब ठंडा, कि बेच दो उसको जहन्नम के अंदर, हुक्म हो गया। तो एकदम फिर बुलाया उसको अल्लाह ताला ने कि इसको वापस तो लाओ, इसकी अज्जत से पूछें, शायद छानबीन करते हैं, शायद कोई निकल आए, अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है, बख्शा जाए। कहते हैं इसकी अज्जा में छानबीन करो कि कुछ इसमें कुछ चीज़ तो निकले ऐसी, इसमें शायद कोई काम बन जाए। अब उसके हाथ देख रहे हैं, पाँव देख रहे हैं, फिर से सब नफ कुछ भी नहीं निकला, कोई अमल नजर नहीं। तो जब आखिर में उसकी ज़बान को देखा तो ज़बान पर लिखा हुआ था नूरानी लफ्ज़ों से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो अल्लाह ने क्या, अब इसको जहन्नम में कैसे भेजा जा सकता है, छुट्टी कर। तो इमाम राजी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, देखें कि जब इंसान कपड़ा बदलता है और कपड़े बदलते जाहिर है बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं आप भी, एक आदत है वो तो बन चुकी इंसान की, ये नहीं हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उसने जब कपड़ा बदला तो क्या होता है, उस बिस्मिल्लाह की वजह से जो जन्नात होते हैं उसमें उसमें क्या हो जाती है, दीवार बन जाती है, आड़ आ जाती है। इमाम राजी लिखते हैं कि भाई जब इस कलमे की बरकत से दुनिया के अंदर उस इंसान के दुश्मनों के दरमियान में आड़ आ गई है, तो ये क्या मुमकिन नहीं होगा कि आखिरत में जो फरिश्ते होंगे दोजख के, उस इंसान के और उन फरिश्तों के दरमियान आड़ आ जाए, दीवार बन जाए और वो दोजख की आग से बच जाए। इतना अजीम कलमा होगा, बरकत कैसी इस कलमे की, आप ये देखें, एक लफ्ज से अल्लाह, इसमें ज़ात अल्लाह, ये ऐसा लफ्ज है कि पूरी कायनात का ये जिक्र है अल्लाह, और सारी कायनात जो है इसी पे कायम है, अल्लाह पर, इसमें ज़ात अल्लाह पर, बिस्मिल्लाह जो अल्लाह ने कलमा दिया यही है। तो हर आदमी जो है, हर आदमी इसका जाहिर है अल्लाह के फजल से और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करने के बाद। अब यह है कि इस कलमे को जो दबोच ले, हकीकत समझ जाए, इससे प्यार करने लगे और इसकी कदर करने लगे, अल्लाह का शुक्र करने लगे और इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, इसको सिर्फ एक चीज़ अल्लाह, एक नहीं अनगिनत करोड़ों के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के वो वली पैदा हुए हैं जिनके सिर्फ एक ही वजीफा था, वो क्या, अल्लाह। इसमें सिलसिले नक्शबंदिया के आप देखें, तारीख उठा के देखिए, और भी सिलसिले हैं, हर सिलसिले एंड कहाँ होता है, जाकर इसमें ज़ात अल्लाह पर, सारे राज वहीं खुलते हैं जब इंसान अल्लाह को पकड़ लेता है, अल्लाह के इस्म को पकड़ लेता है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह सुभान व तआला कहता है कि जो मेरे नाम को पकड़ लेता है, जो मेरे नाम पे जुड़ जाता है, तो मैं उसको छोड़ कैसे सकता हूं, छोड़ ही नहीं सकता। बस कदर की बात है ना दोस्त, कदर की बात है कि हमारे में कदर ही नहीं है, पता ही नहीं क्या नाम। जिस समय आपको बिस्मिल्लाह का नाम दिया तो अल्लाह का हमें, अल्लाह ने दे दिया है हमें नाम अपना, दे तो दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं उसके साथ, हम कुछ समझते हैं उसकी अहमियत नहीं। अगर कोई जिक्र बताया अल्लाह, बस ये अल्लाह तो है क्या, और इसके अलावा मोहब्बत तो करके देखें जरा, इसके साथ दिल तो लगा कर देखें, इस इस्म के साथ, अल्लाह के साथ और उस हकीकत के साथ, इसका कभी जिक्र तो करके देखें, कैसे कैसे अनवरात खुलने शुरू हो जाते हैं अल्लाह का, कितना क़ुरूब मिलता है, अल्लाह क्या बुलंदियाँ अता फरमाते हैं। हज़रत हाफ़िज़ रहमतुल्लाह का किस्सा आपको सुना दूँ, पहले भी सुनाया होगा। हाफ़िज़ कहते हैं नंगा पाँव, ये एक ओबाश किस्म के आदमी थे, नशे में रहते थे हर वक्त, उसका काम ही नशा था, होश ही नहीं रहता था। तो एक दम नशे की हालत में थे, मस्ती में जा रहे थे अपने, और मुझे तो देखा अल्लाह का नाम एक वैसे पड़ा था ज़मीन के ऊपर, तो उनकी आंखें खुली, अल्लाह का नाम एकदम उठाया, चूमा, खुशबू लगाई उस नाम पर, दिल से लगाया और फिर एक ऊँची जगह पर उसको रख दिया, अदब के साथ उसको ऊँची जगह पर रख दिया। और यह इब्तदा है तसव्वुफ़ की, अदब, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये तस्वी नहीं है, जिसको तस्वी से अदब ही नहीं आया वो तो जानवर है, यहाँ हम अदब सीखने आए हैं, ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ अदब, अदब की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कोई तस्वीर नहीं फेरी, उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई नमाजें नहीं पढ़ी, कोई तोहजिंद पढ़ी, वो तो नशे में थे, उन्होंने क्या किया, मेरे भाइयों अदब सीखो। वो अदब ऐसी चीज़ है कि सारे सहाबा कराम को कुरान में बड़ा पढ़ा है कि किस तरीके से सहाबा कराम को बताया गया कि नबी हमसे किस तरह बात की जाए, किस तरह गुफ्तगू की जाए, किस तरह इल्तजा की जाए, किस तरह दुआ के लिए कहा जाए, किस तरह बात की जाए, किस तरह निश्चित की जाए, सारा अदब ही है। कुल्लू नदब, तसव्वुफ जो है अल्लाह तक पहुंचने की जो सीढ़ी है ना, सारी किस पर मबनी है, अदब पर है। जिसमें तकब्बुर होगा उसमें कभी अदब नहीं होगा, बदतमीजी करेगा, बातों में बदतमीजी करेगा, मजलिस की परवाह नहीं करेगा, एहतमाम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें, सब फेल हो जाते हैं आदमी, गिर जाते हैं दर्जे से। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, अल्लाह के नाम का अदब किया। तो जिनको यही अदब ना हो कि अल्लाह की मजलिस लगी हो, वो जिक्र भी करता हो, उसको इतनी तमीज नहीं कि बात कैसी की करनी है, मुकाम इस्तिग़फ़ार है उसके लिए, किस कदर उसको अल्लाह ताला उसकी नाराजगी हो कि उस मजलिस के अंदर बैठा हुआ और जानता भी हो, और बेअदबी इतनी कि इंतहा दर्जे की, तमीज़ नहीं कि गुफ्तगू कैसी करनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, ये सीखा ही नहीं। सबसे पहले जो सीखना चाहिए एक मुरीद को, एक सालिक को, अदब सीखना चाहिए कि अपने शेख के पास कैसे जाए, शेख से गुफ्तगू कैसे करे, किस तरह उससे किसी बात के बारे में कहा जाए, किस तरह उससे इल्तजा की जाए। ये पहली चीज, पहला स्टेप है, याद रखें, वरना मुरीद किसी स्टेप पे भी कामयाब नहीं हो सकता। इबादत सेकंड दर्जे पे आते हैं, टीचर जो सिखाने वाला होता है उसका अदब पहले दर्जे पर आता है, और उस अदब के बाद इंसान मंजिलों को तय करता है। हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता था, और यही कुरान सिखाता है हर चीज़ को। तो इस चीज़ का खास कर ये हम सब लोग इस मंजिल पर हैं, ये मैं अहतमाम आपको बता रहा हूँ, इधर जो मार खा गया मार खा गया, जिसको यही पता नहीं कि बैठना कैसे, गुफ्तगू कैसे करनी है, किस तरह अपने शेख के पास जाना है, कैसे बात करनी है, किस तरह करनी है, मजलिस जो है शेख की उसका क्या एहतराम है, उसके क्या आदाब हैं, उसमें कैसे गुफ्तगू करनी चाहिए, किस तरह मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, इस पर तो किताबें लिखी हैं लोगों, बड़े बड़े मशाइख ने किताबें लिखी, अकाबरीन ने किताबें लिखी इस चीज़ पर। यही आदमी मार खाता है, यही मार खाता है, हत्ता कि ये यहाँ तक लिखा है स्थानीय रहमतुल्लाह ने कि तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि शेख के जूतों को उठाया कैसे जाता है, इसलिए खबरदार हर आदमी जूतों को हाथ ना लगाए। वो समझ रहा है कि इसमें शायद तरक्की हो रही है, बजाय तरक्की के क्या है, वो नीचे जा रहा है। तो इसलिए सख्ती से मना किया गया है। और मैं भी आप हजात को हमेशा कहता हूँ, मेरा ना मिजाज में ही नहीं है ये बात, मैं पसंद नहीं करता कोई मेरे लिए खड़ा हो, कोई मेरे जूतों को उठाए, मेरे लिए दरवाजों को खोले, मैं नहीं पसंद करता। और जिस चीज़ को कोई पसंद ना करे उसको वो काम करे, तो बजाय ऊपर नीचे आने के नीचे जाएगा वो आदमी। अपने शेख के मिजाज को पहचानना चाहिए, मेरे मिजाज नहीं है ये कि मैं हूँ तो आप लोग खड़े हो जाएं, हाथ बांधें, या दरवाजे खोलने लगें, या जूते उठाने लगें, या इस किस्म के रसूमात मुझे पसंद नहीं है। ये नाजायज नहीं, मैं कह रहा नहीं कह रहा नाजायज है, ये तो सूफिया साहब कहेंगे आपको ये आला, लेकिन मुझे बाज़ाती तौर पर मुझे नहीं पसंद ये बात, मैं 12 लोगों को समझाता हूँ ये बात, क्योंकि खुद थाने कहते जूती उठाने, अल्लाह वाले की जूती उठाने के अंदर ही बहुत अदब की जरूरत है, उसका भी सलीका हमें नहीं आता जूते कैसे उठाएं। वो बताते हैं कैसे, क्या रेस लग जाती है जूते उठाने में, अब वो बेचारा जूती पहनना चाहता है, वो जूती को उधर से उठ खींच रहा है कि उधर से खींच रहा है, अब वो बुरे बुरे परेशान हाल में खड़ा है कि मैं जूती पहनूं तो कैसे पहनूं। बाज दफा होता है कि वो जूती उसने ये थाने रखा है, बाज दफा होता है कि वो जूती की ले जा रहा, उसने जूती उठा ली रखने के लिए और उसने अपनी मर्जी से जूती जाके ताक पे रख दी, वो कहीं चला गया, अब वो बेचारा ढूंढता फिरा कि मेरी जूती कहाँ गई है, मैंने तो यहाँ उतारी थी, कहाँ चली गई। बहुत बड़ी चीज है अदब, जिसको अदब नहीं है वो चल ही नहीं सकता इस मामले, जाहिल है, पागल है, उजड़ है, चाहे कितना जिक्र कर ले, अंदर आना, बैठना, तसव्वुर, ये तो एक बहुत बड़ी चीज है भाई। अगर अल्लाह को पाना है, मैं आपकी ये मिसाल दे रहा हूं हज़रत हाफ़िज़ रहमतुल्लाह की खिदमत बिल्कुल जायज है, शेख की खिदमत दर्जे बुलंद होते हैं, शेख की खिदमत दर्जे बुलंद, लेकिन खिदमत के अदब होना चाहिए। ये अंदाजों खिदमत चलती जो है बस ये कर लो, ये फलां कर लो, ये कर लो, इधर कर लो, नहीं, हर चीज का अदब है, और ये हर मशाइख हर शेख बताता है, इसको समझाता है, किताबें लिखी गई हैं इस चीज पर, खिदमत जरूर करो, अल्लाह वालों की खिदमतें करो, लेकिन अदब सीख कर करो, अपनी मर्जी से ना करो, इसके भी नुकात हैं जिस पर इंसान को चलना चाहिए। तो ये अदब, अल्लाह का अदब उन्होंने किया, सिर्फ एक नाम का, एक शराबी ने, गुनाहगार फासिक ने, जंदीक ने, सिर्फ क्या किया, इस नाम को उठाया, अल्लाह के नाम को उठा के लिया भी नहीं, अदब के साथ चूमा, उसको ऊपर रख दिया, ऊपर रखा, चले गए, फिर नशे के अंदर फिर चलाई चिंचा बोते हैं पड़े गए। उस इलाके के जो वली थी, लिखा है किताब में, शेख तार की किताब उठा कर पढ़ लिया, जो वली थे उस जमाने के वहाँ के होंगे कुतबदार, अल्लाह ने फौरन उनको इशारा दिया ख्वाब के अंदर कि जाओ फला शख्स है और उनके पास जाओ, और बशर नाम था उनका, तो कहो कि अल्लाह ताला ने तुझे आला दर्जी विलायत के दे दिए। आँख खोली उनकी चाहिए, बशर ये तो बहुत बड़ा नशा करने वाला शख्स, क्या बात करें, कहते हो सर शैतान का गलबा हो, इधर बात चलती, दूसरे दिन सोए तो फिर वही बात, अल्लाह की तशार, जाओ उसको बोलो कि उसने मेरे नाम को बुलंद किया है तो मैंने उसको बुलंद कर दिया है। एक नुकता मेरे हज़रत फरमाते थे कि जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है उसको बुलंद करता है अल्लाह पाक। ये सब बुलंदी की चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अदब, अदब मजलिस को आप बुलंद करने हैं या बेअदबी करने हैं, वहाँ पर बैठ कर घटा रहे हैं उसको, कितनी कितनी खराब बातें इंसान अगर उसमें बेअदब होकर बैठे, आप मुझे बताएं कितनी खराब बात है। तो उनका अल्लाह हज़रत फरमाते थे जो अल्लाह के नाम को बुलंद करता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है, और ये मिसाल है इस चीज़ की। फिर तीसरे दिन, दूसरे दिन उनका ये तो बस ख्याल ही हो सकता है, तीसरे दिन फिर आ गया उनका ये तो भाई मामला हकीकत है, अब तो ये पैगाम लेके जाऊं, अल्लाह ताला ने कहा कि बशीर बशीर हमने तुम्हें चुन लिया, अपने अपने दोस्तों में तेरा नाम लिख लिया, और ऐसा नहीं बल्कि बुलंद कर दिया तुझे। अब वो तो नशे में निकल रहे थे, वो तो पहले घर गए, कहीं घर में कहा, वो तो पड़े होंगे किसी मेकदे के अंदर, मुश्फ मारे होंगे जाम, अब उनका मैं हूँ, वो मुझे कहने का मैं जाऊँ तो वहाँ कैसे जाऊँ, जाहिर है ऐसी जगह पर जाना तो फिर एक नेक आदमी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है ना, लेकिन हुक्म था, पहुँच गए। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ बशीर साहब कहकर जी वो तो लेटे पड़े नशे में, होश ही कोई नहीं है, कहते उनके कान में बात कर दो कि एक शख्स बाहर आया अल्लाह का पैगाम लेकर आया है, इस कान में इतनी बात कर दो उनसे, इसी जागे के बशर हमारे इलाके के जो बुजुर्ग हैं नेक आदमी हैं वो तुम्हें तलाश करते हुए आए हैं, पूछ रहे हैं तुमसे, वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगाम, कहते हैं अल्लाह का पैगाम मेरे लिए, कहते झूठ तो हो नहीं सकता, वो तो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह का पैगाम मेरे लिए है, वो तो मस्त हो गए भाई, और वहीं नशे में कह दिया अल्लाह ताला मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे सच्ची तौबा करता हूँ। सुभान अल्लाह, किस तरह अल्लाह ताला इंसान को बुलंद करता है, क्योंकि हर दर्जा इंसान का किससे खुलता है, तो तभी कहते हैं भाई किसने जिक्र सीखना है पहले क्या करे, तो वह पाक करती इंसान साफ कर देती। तो अब उसी हालत में उन्होंने कोई वजू नहीं किया, कोई गुस्ल नहीं किया, उन्होंने क्या अल्लाह ताला मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे, अल्लाह ने कहा सुभान अल्लाह, जा तेरे सारे ही माफ किए। तो पता चलता है जिस मुकाम पे भी इंसान खड़ा हो, ये नहीं चाहते कि मैं मस्जिद में जाके माफी मांगूंगा या फलाही जगह माफी मांगूंगा, नहीं, अगर किसी गंदी हालत के अंदर भी है और गंदी हालत के अंदर भी उसका एहसास दिला दिया अल्लाह ताला ने और वहीं वो तौबा करता है तो तौबा वहीं कबूल हो जाती है। किसी जगहों के इंतजार ना करे, पाकी के इंतजार ना करे, गुस्ल का इंतजार ना करे, वक्त का इंतजार ना करे, समझो कि रहमत का झटका आ गया है, ये जो तौबा का इशारा मेरी तरफ हो रहा है, ये मेरी जिंदगी बन रही है, फौरन कह दे अल्लाह, और बिल्कुल वसावे से शैतानी में आए ना, जैसे आप यहाँ आदमी बैठे हैं, आप किसके दिल में आ जाए, चलो जी मैं हाजिर से कहता हूँ मुझे तौबा करा दो, आज शब जुमा है और शब जुमा की तौबा तो बड़ी मशहूर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो दोज़ख से लोगों को निकाला जा रहा होगा, क्योंकि ये तो एक किस्म की ललतुल कद्र वाली नात होती है ना शब कद्र की, तो इसकी कदर आप ये देखें कि जो शब जुमा में मर गया इंसान उसका हिसाब ही खत्म हो जाता है कब्र से। तो अगर किसी के दिल में ना डाल दिया कि भाई चलो मैं भी तौबा करी जाऊँ, हजरत बैठे हैं आज इनके हाथ पे तौबा कर लें, तो बिल्कुल ना झिझके, याद रखना बिल्कुल ना झिझके, उठ के फौरन आ जाए, क्यों कि उस वक्त अल्लाह की रहमत उस पर जोश मार रही है कि तेरी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, तुझे अपने वलियों में रखना चाहता हूँ, उठ जल्दी से तौबा कर। बाज दफा मजलिस में ऐसे इंसान के दिल में आता है बात सुन के, ये तो बड़ी चीज है यार, तो क्यों रखती है यार, लोग क्या कहेंगे, नहीं यार तू ये काम कर नहीं सकेगा, नहीं यार ये काम कैसे मुश्किल, मैं नहीं करूंगा, वल्लाही कभी ना सोचना, बहुत पछताओगे जिंदगी के अंदर इसको उस करने की। अगर किसी मजलिस के अंदर कोई अल्लाह वाला बैठा है और ख्याल आ गया अल्लाह की तरफ से कि मैं तौबा कर जाऊं, छलांग मार के पहुंच जाना, दुनिया की परवाह न करना, लोगों की परवाह न करना, शैतान की परवाह न करना, ये भी ना सोचना कि बहुत मुश्किल है, वल्लाह अल्लाह की रहमत उतर जाएगी और बहुत आसान कर देगी। जहां भी सुन रहे हैं मेरी ये बात, जिधर ये मेरे पैगाम जा रहे हैं, तो बहन भाई मेरे दोस्त अहबाब ख्वातीन फौरन तौबा कर लें अल्लाह के, शब जुम्मा है आज, बहुत ऊंची रात है, पता नहीं किसकी अगर किसके दिल में आ रहा है कि मैं तौबा कर लूं, देखें हाफी का काम बना कि उसने शराब खाने के अंदर कहा अल्लाह मुझे माफ मार दो, अल्लाह ने शराब को माफ ही नहीं किया, दर्जात को बुलंद कर दिया। तो गोया अल्लाह ने साबित किया कि ओ अल्लाह वाले अपने बुजुर्ग जिन्होंने भेजा था कि तेरी वजह से नहीं आ रहा, बल्कि मैंने इस पर ऐसा असर किया है, मैंने इसके इतना बड़ा इनाम दिया है कि ये तौबा के लिए किसी का मोहताज भी नहीं हुआ, शराब खाने में मैंने इससे तौबा करा दी। कितना महबूब हो जाता है इंसान, मुझे आप बताएं, अल्लाह के नजदीक तौबा करने के लिए क्या किया था उसने, अदब किया था, क्या किया था, बेअदबी से बचो, जानवर ना बनो इंसान बनो, जाहिलों की तरह बातें मत करो, जिक्र करते हैं मजलूम को देखें, मजलूम को देखो, जिस मजलूम में बैठे हैं, जिस मजलिस में बैठे हैं, जिस इंसान के सामने बैठे हैं, अक्ल से बैठे हैं, दिमाग सोच के बैठे हैं कि जहां इनाम ज्यादा मिलते हैं वहां सजाएं भी ज्यादा मिलती हैं, ये भी याद रखना। तो अल्लाह की मजलिस के अंदर ये इनाम देखें कितने बुलंद इनाम मिलते हैं, कहां से कहां इंसान पहुंचते हैं, बाहर निकले हाफी तो कहने भी क्या बात है बुजुर्ग को कैसे आए हो, कहते यार बुजुर्ग तो तुम हो, अल्लाह ने तुम्हें अपने दोस्तों को चुन लिया, तो इतना असर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर दुनिया तब्दील हो गई। तो वहीं खड़े उन्होंने कहा कि अब हाफी देखें अदब किस तरह आ जाता है इंसान पर, जिंदगी हाफी कहा जाता है कि नंगे पाँव, जिंदगी भर बशर ने रहमतुल्लाह अलैह कभी भी जिस तरह निकले थे उसी हालत में रहे, कहना आज क्योंकि तौबा मैंने जो है नंगे पैर की है, अल्लाह ने मुझे इस हालत में पसंद किया है, तो ये हाफिज मरते दम तक कभी भी अब जूता नहीं पहनेगा, क्योंकि अब मेरे नजदीक की पूरी जमीन जो है ये क्या है, ये अजीम तरीन बादशाह का सल्तनत का जिसकी सबसे बड़ी सल्तनत है उसका ये फर्श बन गया है, और फर्शों के ऊपर गुलाम का क्या काम के जूता पहन के चले, क्या मुकाम मिल जाता है, क्या शऊर आ जाता है, देखें अल्लाह से मोहब्बत इंसान की आती है, कहते हैं कहीं किसी किताबों से आती है या मदरसों से आती है, कहीं से नहीं आती, कि तो जब अल्लाह से इंसान मोहब्बत करता है तो खुद ब खुद ये चीजें उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों अल्लाह का नाम इतना बुलंद है, कितने अफसोस की बात है कि अल्लाह ने बगैर किसी मेहनत के बगैर किसी कोशिश के कितनी बड़ी चीज़ हमारे सीने में उतार दी, इसको कहते हैं नक्श बंद कर दिया, कितने बड़े सिलसिले से ताल्लुक पैदा कर दिया, वजूद में अल्लाह के नाम को उतार दिया, और उस अल्लाह को नाम के वजूद भी रखें और दुनिया गंदी दुनिया पर मरते फिरें, गुनाह करते फिरें, अल्लाह के नाम का कभी जिक्र ही ना करें, सुबह और शाम मुराकबा हो और हम कभी आए ना बैठी ना तस्वीर ना करें, बस अपनी मस्ती में फिरते रहें, क्या जिसका जवाब दे सकेगा कोई इंसान कि इतनी बड़ी कीमती चीज जिसके मैंने आपके सामने पेश किया है, बिस्मिल्लाह की जो फजीलत है मैं नहीं बयान कर सकता इस रात में, कितने कितने इसके फजाइल हैं
اس وقت وقت ہی نہیں وہ آپ کو بتا. کتنی حدیث ہیں اور کیا کیا معرفت اس کلمے کی ہے یہ تو بتا ہی نہیں سکتا میں آپ, نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنا وقت ہے. تو اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ, اللہ. اور اللہ کو ہم سمجھتے ہی نہیں, اور اتنا آسانی سے دے دیا, بشر کو دیا شراب خانے میں. تو ایک عظیم انسان بن گیا, اتنا بڑا انسان جو کبھی شرابی تھا جس کو کوئی پوچھتے نہیں تھا, گالی نہیں دیتا تھا. وہ ایک دفعہ اپنے گھر کے اندر گئے, دیکھیں کیسا کام, گھر میں جو گئے دیکھا ایک شخص جو اوپر کی چھت پہ بیٹھے ہیں, نورانی شکل ہے. اوپر گئے کہ بھائی تم میرے گھر میں بغیر اجازت کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں مجھے اجازت کی ضرورت نہیں, میں خضر علیہ السلام ہوں, میں تو تمہاری زیارت کے لیے آیا ہوں. جس کا یہ مقام ہو جائے کہ خضر ملنے ہیں اس کے گھر, اور پہلے کیا تھے, کس چیز سے؟ صرف اللہ کو, اللہ کے نام کی وجہ سے, اللہ کے نام کو لے لیا. کیا آپ کو اللہ کا نام نہیں ملا؟ کیا آپ نے اللہ کا نام نہیں سیکھا؟ کیا آپ اللہ کی معرفت تک نہیں پہنچے؟ کیا کیا ہے, کتنا آپ مراقبات میں آتے ہیں, کتنا آپ ذکر کرتے ہیں, مجھے بتائیں, کتنی دل لگی کرتے ہیں اس کے ساتھ, کتنی محبت کرتے ہیں اسلام کے ساتھ, کتنا نخرم کرتے ہیں. اتنی تصویر نہیں جی, بڑا مشکل ہے, اتنے تو معاملے. سبحان اللہ, یہ تو اتنا سونا پیارا لذیذ نام ہے, اس کی لذت پہ تو انسان جان قربان کر دیتے ہیں. ایک شخص مکے کے اندر سخت, حضرت فرماتے تھے سخت سردی, جب سردی پڑتی تھی بڑی سخت سردی پڑتی ہوں, لوگوں نے کمبل اوڑے کانپ رہے سردی سے, اور وہ ایک صرف ایک ململ کے کرتے کے اندر بیٹھے تھے. تو وہ شخص کیا کہ جی کمبل میں, اس نے غریب آدمی میں کمبل دیتا ہوں, اس نے جو کہا کہ حضرت یہ کمبل اوڑھنے سردی بہت سخت ہے, اوڑھنا آپ لپیٹ لیں اس کو, مجھے کمبل آپ اوڑھ لیں. تو انہوں نے مسکرا کے دیکھا کہ کمبل تم اپنے پاس رکھو, بس ایک دفعہ دل سے اللہ کا نام سنا دو مجھے, لونا اللہ کا نام. اس نے کہا اللہ, جیسے اللہ کا تو اوپر سے لے کے نیچے تک پسینہ ٹپکنے لگا. اللہ کے نام نام لینے والے ایسے ہوتے ہیں, ان کو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. ہم کیا قدر کر رہے ہیں میرے بھائیوں, کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دولت دے دی ہے کہ اتنا با برکت نام ہے یہ اللہ کا, اتنا با برکت نام ہے کہ یہ نام لینے والے کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بلند تر بلند کرتا ہوں, اور اتنی برکت کہ ہر چیز میں زندگی کی برکت آ جاتی ہے, اسے مننے کے بعد برکت آ جاتی ہے, زندگی میں برکت آ جاتی ہے, پشتوں تک اس کی برکت چلتی ہے جو اللہ کا نام لینا سیکھ جاتا ہے. تو میرے بھائیو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ صرف ذکر کی مجلس ایسی ہے اللہ کے فضل سے, کہ اللہ کے کرم اور فضل سے ہم بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر, لیکن اتنی بڑی چیز دی ہے, ایک تھوڑی سی مرسڈیز ہمیں مل جائے تو کتنی قدر ہم کرتے ہیں, اس کو چومتے ہیں, اس کو دھوتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کی ٹائر دیکھیں گے, کبھی اس کی پٹرول دیکھیں گے, کبھی اس کی کوئی چیز دیکھیں گے. کوئی مرسڈیز ہے, بی ایم ڈبلیو مل گئی, یا کوئی نیا مکان لے لیا, اس کی فکر کریں گے. جس نے اللہ 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 کے نام کو, جس اللہ نے جس نے اپنا نام دے دیا, جس کے سینے کے اندر نقش کر دیا, مجھے بتائیں اس پہ انسان نخرا کرے پھر؟ کبھی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا, گناہوں سے بچنا چاہیے, اور خوب کثرت کے ساتھ اللہ کے نام کو لیں. خوب ایک ایک نام کا اللہ بدلا دے گا, جتنی دفعہ ہم لیں گے نام, ایک ایک دفعہ کہنے کا اللہ تعالیٰ بدلا اس کو دے گا, اس کا بدلا ایسا ہوگا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. قیمت لیں گے کہ اللہ اس میں ذات کی اللہ کی, کہ دیکھیں یہ اتنا کہنے والا ہے, یہ اتنا کہنے والا ہے, یہ اتنا کہنے والا ہے. ہر حقیقت جو ہے یہاں ظاہر نہیں ہو سکتی, اللہ نے پوشیدہ رکھی ہیں چیزیں, جو انسان کے انعامات ہیں یہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے. اے مجالس جو ہیں اللہ کے ذکر کی, ان کی قدر نصیب فرمائے, اور اس کے لیے جتنی بھی ہم محنت کر سکتے ہیں بہت کم ہے. ساری دنیا اور آخرت اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے اللہ کے ذکر کے اندر. بولا ذکر اللہ ہے اکبر, اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے.